あれの時は。
தானம் நமோ ஆயிரி யானம் நமோ வச்சாயம் நமோ துவை சந்தசாம் சுரு அசுரேந்து நலேந்து வந்துட்டு கர்ம மல நிர்மல கரண் விரஷதீர்த்தகே கருதார் ஸ்ரீ वर्धमान जिन शत शत नमन हरिहंत सीताचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि सब आत्मा की अवसाएं आत्मा ही है शरण आत्मा ही है
आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मूल गाथाएं हैं, जिसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है निज आत्मा ही है शरण। क्या पंच परमेष्टि शरण नहीं है क्या? कि पंच परमेष्टि की शरण तो है, लेकिन जब अपनी शरण ना मिले तब जो अपनी शरण में आ जाते हैं उनको पंच परमेष्टियों की शरण में जाना योग्य नहीं है। पंच परमेष्टियों की शरण की अपेक्षा अपनी आत्मा की शरण ही सर्वश्रेष्ठ है। और पंच परमेष्टियों की शरण में कदाचित गया हो और उसमें बहुत अच्छा मानता हो तो कहते हैं संकट में पड़ गया। तो ऐसी मूल गाथा में कह दिया अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांच परमेष्टि हैं, किंतु ये पांचों में ये पांच की जरूरत नहीं है। कोई एक शरण हो तो काम होता है। जैसे मान लो किसी जगह पर कहीं हम फंस गए हों और हम सोचे कि इससे भी काम करा लें, उससे भी करा लें, इससे भी करा, तो ऐसे पांच जगह फंसेगा तो काम नहीं होगा। एक सब में जो महत्वपूर्ण है उससे बात करो, उससे काम कराओ। तो ये पांच पांच बतला दिए यहाँ। अरहंत की शरण में चले जाओ, सिद्ध की शरण में चले जाओ, आचार्य उपाध्याय साधु की शरण है। तो भैया हम तो महासंकट में पड़े, एक बात बताओ किसकी शरण में जाना है। तो पांचों में से किसके बारे में बताएं? तो जो कॉमन है ना सब में, हरिहंत क्या है? परम औदारिक चरित्र है? नहीं नहीं नहीं, आत्मा की अवस्था है। सिद्ध कौन है? वो भी आत्मा की अवस्था है। तो आचार्य उपाध्याय साधु कौन है? कि वो शरीर वाले ऋषि कमंडल वाले कौन है? ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो कहा ये तो सबके सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो शरण कौन है? ये आत्मा ही शरण है। तो पंच परमेष्टियों की शरण का वास्तविक अर्थ तो अपने आत्मा की शरण लेना है। लोग ये समझ नहीं पाते और लोग पंच परमेष्टियों की शरण के चक्कर में बहिर्लक्षी भाव रखते हैं। किसकी शरण? पांच की है ही नहीं, आत्मा की शरण है। इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, इसलिए यहाँ इन्होंने शुभ भाव की भयंकरता बतलाई है। पुण्य के उदय की नहीं, देखना, पुण्य के उदय की बात यहाँ नहीं कही, यहाँ तो पुण्य परिणाम की बात कही है इस गाथा में। जो ये प्रवचन सार 79 नंबर गाथा जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इस गाथा में इन्होंने पुण्य के उदय वालों की बात नहीं कही, क्योंकि पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री को तो वो छोड़ चुका है। अब तो भाव करता है, अब भाव में अटका है, सामग्री में नहीं अटका, संयोगों में नहीं अटका है। हम लोग तो संयोगों में अटके हैं, बाहरी वैभव में उलझे हुए हैं, हमारी आसक्ति वैभव के प्रति दिखाई देती है। वो सारा घर बार परिग्रह वैभव जो पुण्य के उदय से मिला हुआ था उसे छोड़ करके मुनि बन गया। इसका मतलब पुण्य के उदय का तो प्रसंग रहा नहीं। अब मन में जो परिणाम आते हैं, मन में जो भाव होते हैं, उन भावों को बहुत श्रेष्ठ मानकर अपने आप को महान व्यक्ति समझने लगा। कहते हैं शुभोपयोग परिणाम تو یہ بہت برے پڑیں گے, بہت مہنگے پڑیں گے. ابھی تو تجھے اچھے لگ رہے ہیں لیکن یہ تجھے تھوڑی دیر میں ایک دم جھٹکے سے نیچے گرا دیں گے. پنیہ پرینام کے بارے میں نیم ہے کہ انترمور سے زیادہ ٹکتے نہیں ہیں. اب ہم ان پنیہ پرینام میں اٹک گئے تو انترمور سے زیادہ تو ٹکیں گے نہیں, اشبھ میں لے آئیں گے, نرک نکود میں لے جا کر کے پٹک دیں گے. کتنا ساودھان رہنے کی ضرورت ہے ان سے. دیکھیے ہمارے من میں بھی جب کبھی کوئی کھوٹا بھاؤ آتا ہے, پاپ بھاؤ آتا ہے, تو ہم اپنے آپ کو کتنا برا سمجھتے ہیں. ارے ارے میرے من میں کیسا بھاؤ آ گیا, میرے من میں ایسا پرینام نہیں آنا چاہیے تھا. اور لیکن جب دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, ہم دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں, تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. یہ کہتا ہے میں نے کیا غلط کیا ہے جی دوسروں کے بارے میں اچھا سوچا تو. کوئی برا تھوڑی نا سوچ رہا ہوں کسی کے بارے میں, سب کے بارے میں بھلا سوچتا ہوں, سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں, دنیا کے ہر ویکتی کا بھلا ہو, سب کا سہیوگ کرتا ہوں, دیا کرتا ہوں میں, اس میں کیا غلط کر دیا میں نے. یہ غلط تو یہی کیا کہ تو نے دوسروں کے بارے میں سوچا, اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچا. دوسروں کے بارے میں جو بھلائی کے بارے میں سوچ رہا ہے نا, یہی تیری سب سے بڑی مائنس پوائنٹ ہے, سب سے بڑی ویکنیس ہے, یہ تیرے دکھ کا کارن ہے. تو پھر کیا کریں کہ اپنے آپ کے بارے میں سوچ. جگت میں جسے سوارتھی کہتے ہیں وہ سوارتھی کی بات نہیں ہے, یہاں تو سچے سوارتھی کی بات ہے. موکش مارگ میں جو واستوک سچے سوارتھی ہو گئے ہیں انہیں جیووں کو مکتی کی پراپتی ہوتی ہے. سچے پروشارتھ کی پریرنا دے رہے ہیں یہاں پر آچاریہ دیو. کام جو کرنے یوگیہ ہے سنسار میں پریبھرمن مٹے اس کے لیے تمہیں موہ کو جیتنا ہی پڑے گا. انت کال کے لیے سدھ دشا کی پراپتی کرنے کے لیے موہ کی سینا پر وجے پراپت کرنی ہی پڑے گی. تو کیسے وجے پراپت کریں کہ اپنے آتما کو جاننا اس سینا پر وجے پراپت کرنے کا اپائے ہے. کیسے جیتا جاتا ہے موہ کی سینا کو, اپنے سواؤ کے اولمبن سے جیتا جاتا ہے. موہ کو بلوان مانتا رہے گا تو کام نہیں چلے گا, اور سواؤ بلوان ہے ایسا جانے گا تو کھڑ ماتر میں کام ہو جائے گا. آج تک ہم کرموں کو بلوان سمجھتے رہے, کرموں کو سب کچھ سمجھتے رہے. جب جب کرموں کی چرچا چلتی ہے تو ہم سمجھتے رہے جڑ کرم گھماتا ہے مجھ کو, کرم ہی کرتا ہے میرا, کیا کروں, میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, سب کرم کے ہاتھ میں, سب ادے کے ہاتھ میں. پاپ کرم کا ادے ہے, کبھی کہتا ہے پنیہ کرم کا ادے ہے. ایک کرم کرم کے ادے میں الجھا ہوا ہے نا, تجھے کرم کے ادے میں پھنسا ہوا ہے. یہ بہت خطرناک کام ہے, اپنی باغڈور تھی کرم کے ہاتھ میں سونپ دی تو اپنی سوادھینتا کا اسکلن کر لیا, کرم کے آدھین ہو گیا, سوئم پرتنتر ہوا ہے. کرم نے آج تک کبھی اس جیو کو پرتنتر یا پراجین کیا نہیں ہے. کرموں کی یہ سامرتھیہ نہیں ہے جو اس جیو کو باندھ سکے اور پرتنتر پراجین کر سکے. یہ سوئم کرم کے آدھین ہوتا ہے, سوئم کرموں کو کرتا دھرتا مانتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے, ویکتیگت بھول ہے ہماری. سمجھیے آپ, کرم یدی بلوان ہو گئے تو کتنی بڑی سمسیا آئے گی. آتما بلوان یا کرم بلوان, میں سال ڈیڑھ سال پہلے ہمارا ایک پرکرن چلا تھا گنستان ویویچن میں, یہ بھی کانفرنس کالنگ چلتی ہے یہیں امریکہ والوں کے لیے. تو اس میں ایک پرکرن تھا آتما بلوان یا کرم بلوان, کچھ بہت چھوٹا سا پرکرن تھا, ہم نے تین چار دن اس کے بارے میں چرچا کی. کون بلوان ہے, ہمیں تو لگتا ہے کرمی بلوان ہے بھائی, ہماری چلتی نہیں ہے کرموں کے آگے. کبھی کبھی بولتا ہے نا ایسا, کرموں کے آگے ہماری بالکل نہیں چلتی ہے, ہمارا بس نہیں چلتا. پاپ کرم کا ادے آتا ہے تو کس کی چلتی ہے. ارے پاپ کرم کے آدھین کرم کی پرتنترتا یہ دے اور سہیوگوں میں ہو سکتی ہے, سوبھاؤ میں پراجین پنا نہیں ہے. یہ اپن نے اپنے کو پراجین سمجھ لیا, پھر اب کرم کے ادے کے آگے نہیں چلتی. یہ کیا نہیں چلتی, یہ کرم کا ادے آئے گا تو دانت ٹوٹ جائیں گے, کرم کا ادے آ رہا ہے تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے, کرم کا ادے آ گیا ہے تو شریر شیتل ہو گیا ہے. تو لیکن کرم کے ادے کی کس پر چل رہی ہے, شریر پر ہوا, آتما پر کیا چلی. ہم نے کیا سمجھ لیا, کیا کریں صاحب, پاپ کرم کا ہو جائے گا, اٹھا بیٹھا نہیں جاتا ہے اب تو. ये पाप कर्म क्यों जाए, उसके आगे हमारी चलती नहीं है बिल्कुल भी। अरे तेरी तो चल सकती है, शरीर की चले चले चले। इसलिए अपने आप को शरीर से भिन्न समझे तो कर्म बलवान नहीं है, कर्म तो इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि स्वभाव का अवलंबन लेना तो बहुत दूर की बात है। ये स्वभाव सन्मुख चर्चाएं भी कर्मों को उड़ा देती है, हाँपने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है कर्मों की स्वभाव सन्मुख चर्चाओं से भी। जब इस जिनवाणी की चर्चा मात्र से कषाय मंद हो जाती है तो जो बातें इसने कही है उसका अनुभव कर लेने पर कषाय टिक कैसे सकती है। हाँ बिल्कुल, क्या क्या कर लेंगे ये कर्म, क्या बिगाड़ने में समर्थ है, तो आप पराधीन तो खुद हो रहा है ना। कर्म तुझे पराधीन कर सके ऐसी बात है ही नहीं। पता है गोमट सार पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है इस एक जीव के साथ में एक समय के परिणामों में समय प्रबद्ध कर्म बनते हैं। समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध कर्म प्रति समय बन रहे हैं इस जीव के साथ में। और समय प्रबद्ध की व्याख्या की है आचार्यों ने, समय प्रबद्ध कितना होता है तो उन्होंने कहा अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्धों के अनंत विभाग, मतलब उसकी क्वांटिटी बताइए अनंत। अपन शॉर्ट में क्या समझे, हर समय इस जीव को अनंत कर्म परमाणु बांध रहे हैं। इससे क्या बात समझ में आती है, हमने इसके बारे में विचार किया, बहुत गहराई से सोचा इसके बारे में, तो ये बात समझ में आती है कि आत्मा इतना बलवान है, आत्मा इतना ताकतवर है कि जब ये सोया हुआ हो, जब जागृत न हो, तब भी दो चार कर्म परमाणुओं की सामर्थ्य नहीं है जो बांधने के लिए आ जाए। अनंत कर्म परमाणु मिलकर के बांधने का प्रयास करते हैं प्रति समय, तब भी बांधने में समर्थ नहीं हो सके। ये जो अनंत कर्म परमाणु प्रति समय बांध रहे हैं, आत्मा के साथ में बंध रहे हैं, इससे भी तो आत्मा का बलवान पना ही सिद्ध होता है। कोई मान लीजिए किसी ऑफिसर पुलिस वाले के पीछे कोई चार पांच डाकू लग गए हो और वो उनसे बच करके भागने की कोशिश कर रहा हो और बच करके निकल जाए, तो हमको क्या लगता है कि इनसे ज्यादा ताकतवर है ना, तभी तो बच करके निकल गया। और यदि वो उसको घेरने के लिए 25 लोग आ जाएं और फिर भी उसको घेर न पाए, पकड़ न पाए, इसका मतलब वो पुलिस वाला कितना बलवान है। और यदि 100 200 500 लोग मिलकर के पकड़ने का प्रयास करें और फिर भी उसको पकड़ न पाए, तो ऐसे आत्मा को पकड़ने के लिए 100 200 500 नहीं, आत्मा को पकड़ने के लिए प्रति समय अनंत कुदर परमाणु, अनंत कर्म परमाणु लग रहे हैं। सोचो आत्मा कितना बलवान होगा। और ये बात तो तब की है जब आत्मा सोया हुआ है। आप सोचिए शेर सो रहा हो और सोते हुए उस शेर को पकड़ने के लिए ऐसे तो किसकी ताकत है जो पकड़ ले, 10-15 लोग मिलकर के चारों तरफ से घेर करके शेर के ऊपर जाल डालने के लिए जाए, अकेला नहीं कोई भी, सो रहा है अभी वो शेर, सोते हुए शेर को पकड़ने की सामर्थ्य भी किसी अकेले में नहीं है। और यदि उसको घेर करके जाते हुए लोगों के बीच में सो रहा है शेर, थोड़ा सा हिले, थोड़ी सी करवट बदले तो लोग भागते हैं, अभी जगह नहीं है। शेर जग जाएगा तब तो कौन टिकेगा सामने, भागेंगे। सोया हुआ शेर थोड़ा सा हिलता है, जागृत होने के सन्मुख होता है, जागृत हुआ नहीं है, तब भी वो पकड़ने वाले भाग जाते। ऐसे ही भगवान आत्मा सो रहा है मोह की सेना में, सोते हुए को पकड़ने वाले ये सब कर्म दिखाई देते हैं। अभी आत्मा जागृत न होवे, जागृत होने के लिए सन्मुख होवे, सभी कर्म भाग जाते। तो आत्मा जागृत हो जाएगा तो कौन सा कर्म टिक पाएगा। आत्मा जागा और कर्म भागा। जब तक आत्मा सो रहा है तब तक ये उछल कूद मचाते हैं। शेर सो रहा हो, पकड़ने वाले भी, चूहा भी आकर के उसके पेट पे कूदता है, आ जाता है वहाँ, उसको भी डर नहीं लगता, फिर चूहा भी शेर हो जाता है उसके पास में आकर के। लेकिन उसके जगने के बाद तो ये सामर्थ्यहीन कर्म भी मानो आत्मा सो रहा है इसलिए नाचते हैं। जब जागृत हो जाए आत्मा तो कर्म बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। अरे लोगों को ऐसा लगता है कि साहब कर्म 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 सुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म रुलाता है, कर्म हंसाता है, कर्म हमारे को चारों गतियों में रुलाता है, कर्म का ही उदय है जो हमारे को नरक में ले जाएगा, कर्म का उदय वो तो पुण्य का उदय देव गति में चला जाए, पाप कर्म का उदय नरक में चला जाए, निगोद में चला जाए, यहाँ से आखिर नरक में कौन लेके जाएगा यदि कोई जाएगा तो? कर्म ले जाएगा, तो कर्म ही तो है सब कुछ करने वाला। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में ऐसी बहुत सारी गाथाएं लिखी है। कर्म करता है, कर्म कराता है, कर्म रुलाता है, कर्म ही सब कुछ करने वाला है, ऐसी बहुत सारी कंटिन्यू गाथाएं लिखी। उसको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि क्या कह रहे, कर्म ही सब करने वाला है, कर्म ही तो करता है सब कुछ। और फिर 8-10-15-10-5 गाथाएं देने के बाद में फिर नीचे लिखा, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूल जन्म से ही करे। ये मूर्खता पूर्ण कल्पनाएं हैं। कर्मों की आधीन हो जाएगा तो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। जो जीव मुक्त होना चाहते हैं वे कर्म की ओर से दृष्टि हटाएं। यहाँ कह रहे हैं कर्म से मुक्त होने के लिए, कर्म से पार होने के लिए जिसने कमर कस ली है, माने जिसने इतना पुरुषार्थ किया है अंदर से, इतना पुरुषार्थी होकर के जिसने कदम बढ़ाए हैं, क्या वो कर्मों को भी मजबूरन रास्ता देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कर्मों को? ये कहता है साहब पाप कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता। आप किस कहती बोली हो, समझ क्या रखा है आपने? अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा, पार्श्वनाथ जैसों सबको नहीं छोड़ा, आप हो कौन? समझ आकर के पत्थर बरसाता रहा, ऋषभ देव को नहीं छोड़ा, 6 महीने तक तो मान लो वो आहार के लिए निकले नहीं, लेकिन बाकी जब रोजाना आहार के लिए निकलते थे तो आखिर पाप कर्म का उदय उनको भी नहीं छोड़ता। महापुरुषों को भी कर्म नहीं छोड़ते तो हम हैं कौन? हम उनसे कहते हैं अच्छा महापुरुषों को नहीं छोड़ते, पार्श्वनाथ को कर्मों ने नहीं छोड़ा था तो पकड़ रखा होगा अभी तक। अरे जिस घटना की तुम बात कर रहे हो कि कमल पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है, वो घटना तो तुम अधूरी बात कर रहे हो जिसमें तुम्हारे को कर्म जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो मैच चल रहा है, मैच के चलते हुए बीच में निर्णय नहीं सुनाया करते। अभी गेम पूरा तो होने दो, खेल पूरा तो होने दो। अभी अभी तुम्हारे को लग रहा है कि देखो पाप कर्म का हो जाए, पार्श्वनाथ जी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहा है कर्म का हो जाए। अभी तुम्हारे को ऐसा लग रहा है, अंतर्मुर्त में देखना उन कर्मों का क्या होगा, सब भागते हुए नजर आएंगे। फिर क्या हुआ कमठ का, फिर क्या हुआ कर्मों का, पाप कर्मों का? पार्श्वनाथ स्वभाव में पूरी तरह से लीन हो गए तो एक भी कर्म नहीं बचा, अनंत काल के लिए सिद्ध दशा की प्राप्ति कर ली, अनंत बन गए, तीर्थंकर बन गए, समोचरण से विहार करने लगे। कौन जीता? कर्म की आत्मा। लग रहा है आप कर्म जीत रहे, कर्म जीत। अरे तू उदय को देखता है, उदय को देखता है इसलिए संसार परिभ्रमण मिटता नहीं है, स्वभाव को देखने वालों का संसार परिभ्रमण मिटता है। तो उदय की तरफ देखना बंद करें हम। देखिए व्यवहार में इस तरह की बातें कही जाती है, लोग व्यवहार में हम इसी तरह की चर्चाएं करते हैं, कहेंगे भी पाप कर्म का उदय ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जीव पाप कर्म के उदय की वजह से दुखी नहीं है, ये अपने स्वभाव को भूल करके दुखी है। एक छोटा सा बालक, 2 साल का बालक, 2 साल का तो नहीं, थोड़ा बड़ा मान लो आप, 4-5 साल का बालक हो और अपनी माँ के साथ में बाजार में जाता हो, बाजार में जाते हुए उसने किसी गरीब व्यक्ति को देखा, गरीब व्यक्ति दरिद्री, कपड़े फटे हुए हैं, भीख मांग रहा है, भोजन की उसके पास में व्यवस्था नहीं है, रो रहा है, तड़प रहा है, और उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ इसकी हालत क्यों है, ये ऐसे क्यों रोता है, ये ऐसे क्यों दुखी हो रहा है? क्या जवाब देगी बोले एक माँ, एक तत्व ज्ञानी माँ क्या जवाब देगी और क्या जवाब देना चाहिए? बोली महेंद्र क्या लगता है आपको? मैं तत्व ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, अभ्यासी की बात कर रहा हूँ। हाँ सच बात तो ये है, कर्म के उदय से दुखी नहीं है, ये हमारी दृष्टि कर्म के उदय पर ही जाती है, स्वभाव भूल करके दुखी है। मतलब कर्म का उदय तो क्या है, क्या दम है? फटे कपड़े हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसमें दम क्या है? इससे ज्यादा प्रतिकूलता तो नरकों में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी स्वभाव का अवलंबन करके सुखी हो जाते हैं। ये जीव पोताने स्वरूप ने भूले ने दुखी थे, अपने आप के स्वरूप को भूल करके दुखी है, उसको खबर नहीं है अपनी, इसलिए परेशान होता है। पाप कर्म का उदय, आप क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चे को? कर्म के उदय से दुखी होते, पाप कर्म के उदय से दुखी होते, लेकिन क्या होगा बताओ मेरे को? हम तो बच्चों को भी ये स्वाधीनता का मार्ग बतलाना चाहते हैं कि बेटा अपने स्वभाव को भूल करके ये दुखी है, इसकी ये परिस्थितियाँ पाप कर्म के उदय से बनी है, लेकिन ये परिस्थितियाँ इसको दुखी करने में समर्थ नहीं है। आपको समझाना है तो अधूरी बात नहीं, पूरी बात समझाइए, नहीं तो क्या होगा कि वही बड़ा होकर के धीरे धीरे करके, आप तो बचपन से तो उसको ये सिखाते रहे कि पाप कर्म के उदय से दुखी है, और फिर बड़ा हो जाने के बाद में जब हमने कहा कि पाप कर्म के उदय से दुखी नहीं होता, कैसी बात करते हो? फिर समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बात इतनी बैठ जाती है अंदर गहराई। मूल बात भी समझाएं और परिस्थितियों की बात भी बतलाएं। परिस्थितियां कर्म के उदय से है, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ में जो मनस्थिति है वो अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति के काल में मनस्थिति कैसी है, मन में परिणाम कैसे चल रहे हैं, वो अपने हाथ में है। बाहर में फटे कपड़े होना ये जीव को दुखी कर सकता है क्या? आप फटे कपड़े होने की बात करते हो, हम तो कहते हैं कपड़े न हुए तभी परम सुखी है। कैसी बात करते हो आप? कह रहे हो कि साहब भोजन नहीं मिला है तो दुखी है, हम तो कह रहे कई कई दिनों तक निरंतराय भोजन ना मिले, रोज अंतराय होता हो और आहार ग्रहण नहीं कर पाए, तो भी कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। अच्छा बतलाइए, पाप कर्म का उदय ऋषभ देव के ऊपर आया और साल भर तक करीब उनको आहार नहीं मिला, लगभग 13 महीने, 6 महीने उठे नहीं, 6-7 महीने लगभग उनको विधि नहीं मिली। रोजाना आहार के लिए जाते थे, विधि नहीं मिलती थी, रोजाना लौट करके आ जाते थे, तो आहार नहीं मिलने की वजह से ऋषभ देव कितने दुखी थे बताइए, कितने दुखी थे? इसका मतलब दुखी नहीं थे ना, तो इतने दिन तक आहार नहीं मिलने पर भी दुखी नहीं है, तो फिर भिखारी को हम क्यों कह रहे हैं कि पाप कर्म की वजह से दुखी है, आहार भोजन नहीं मिलने की वजह से? अपने स्वभाव की साधना करने वाले कभी दुखी नहीं होते। कर्म का उदय न इसको परतंत्र करने में समर्थ है, न इसको दुखी करने में समर्थ है, न इसको बांधने में समर्थ है। कर्म के उदय से दृष्टि हटाकर जो जीव अपने स्वभाव को देख लेते हैं, कर्म भी समझ लेते हैं कि अभी इनके यहाँ हमारी चलेगी नहीं, चले जाते छोड़ करके, ज्यादा लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। और जब ये जीव स्वभाव सम्मुख होता है तो कर्म भी ये कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तू निकाल रहा है तो समझता क्या है, मुझे दुनिया में आश्रय देने वाले बहुत हैं। दोषय रूपांतर विविधाश्रय जात गर्वई सपनांतरे न कदाचित पीक्षितोसी, भक्तामर की पंक्तियां हैं। जब ऋषभ देव स्वामी के ने अपने घर से अंदर से कर्मों को निकाल दिया, द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों को निकाल दिया, तो बाहर निकलते निकलते कर्म क्या कहते हैं? हे ऋषभ देव तुमने निकाल दिया, तुम क्या समझते हो, बहुत घमंड हो गया तुम्हारे को, तुमने निकाल दिया तो इस भरोसे मत रहना कि हमें कौन आश्रय देगा। अरे 3 लोक के जीव हमें आश्रय देने वाले बैठे हैं, सब हमारे को आश्रय देने वाले बैठे, ऐसा गर्व करते हैं कर्म, ऐसे अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया है वहाँ। सच्चाई तो यही है कि ये जीव पुरुषार्थ स्वयं करे, अपने को बलवान जानकर। ये यहाँ जो बद्धा कक्षेयम शब्द का जो प्रयोग किया है मोह की सेना को जीतने के लिए इस शब्द में इतना पुरुषार्थ की प्रेरणा भरी हुई है, इतना पुरुषार्थ की प्रेरणा भरी है कि सब तरफ से दृष्टि हटाकर बस नो एक्सक्यूज, कुछ नहीं, जो करना है ये काम तो करना ही है। तीन लोग तीन काल में कोई व्यक्ति हमारे को रोकने में समर्थ नहीं है। जब ये जीव स्वभाव सन्मुख होता है तो कर्म की सामर्थ्य नहीं है जो इसको रोक ले। कर्मों की मर्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रतिकूलताएं उपस्थित करने सके, इससे ज्यादा नहीं। क्या कर लेगी बताओ, कर्म क्या कर लेगा? इतने कमजोर है ये कर्म कि हमारे को दुख देने के लिए, फल देने के लिए संयोगों का सहारा लेते, डायरेक्ट तो कुछ करने में समर्थ ही नहीं। बताओ ये कर्म जो है जीव का क्या बिगाड़ता है, क्या बिगाड़ लेगा और क्या बिगाड़ा है इसने आज तक? कर्म बंद रहे मान लीजिए, अभी हमने कोई परिणाम किए और प्रति समय के परिणामों से कर्म बंद रहे। आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधे हुए वे कर्म आत्मा के को कितना दुखी करने में समर्थ है? बंधे हुए कुछ भी नहीं, बंधे होंगे पढ़े, ऐसा कहते हैं कुंदकुंद स्वामी, कुड़वी पिंड समाना, मिट्टी के देले के समान है। उद्गर परमाणु है, आत्मा के साथ में बंधे हैं, बंधे होंगे पढ़े रहे लो, क्या करने में समर्थ है? बंधा हुआ कर्म इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, तो फिर कब समर्थ होता है? जब फल मिलेगा तब की बात अलग है। बंधा हुआ तो क्या है, पड़ा है अंदर, तो फल मिलेगा तब तो दुखी होगा ना। कि अभी अपन थोड़ा बात की बात करते हैं, फल देने के बाद में कर्म वापस खिल जाते हैं, बंधे तो नहीं रहते ना? जब कर्मों ने फल दे दिया तो फल देने के बाद में वो कर्म वापस छूट गए। इसका मतलब जब तक बंधे हुए थे तब तक तो दुखी करने में समर्थ नहीं थे, और फल दे दिया उसके बाद छूट गए तो उसके बाद भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो फिर साहब जब वर्तमान में फल दे रहे हैं तब तो दुखी करने में समर्थ है कि वो कर्म जब उदय में आता है तो एक समय से ज्यादा टिकता नहीं है। कितनी देर के लिए उदय में आएगा कोई भी कर्म? अगले समय में दूसरे कर्म परमाणु उदय में आएंगे, उसके अगले समय में दूसरे कर्म परमाणु उदय में आएंगे। तो बंधा हुआ कर्म दुखी करने में समर्थ नहीं है, उदय में आने के बाद में कुछ देर बाद में दुखी करने में समर्थ नहीं है, और उदय में आता है एक समय मात्र के लिए, एक समय छद्मस्थ के ज्ञान का विषय नहीं है, और वो एक समय का उदय मात्र भी इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये जीव दुखी होता है तो उसमें निमित्त जरूर बन जाता है। अब आप समझ लो क्या है इस कर्म की ताकत, एक समय मात्र का है और हम खाम खामे उसके चक्कर में उलझे, इससे ज्यादा लंबा नहीं है कोई भी कर्म। जो मिथ्यात्व अनादि काल से है ना, द्रव्य मिथ्यात्व से इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, और जो भाव मिथ्यात्व है वो भाव मिथ्यात्व की ताकत और उसका जन्म जीवन एक समय से ज्यादा है नहीं। अगले समय नया मिथ्यात्व होगा, अगले समय नया मिथ्यात्व होगा, अनादि काल से परंपरा रूप से मिथ्यात्व 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 चलता आ रहा है, परंपरा रूप से चलता आ रहा है अनादि काल से। हम ये कह रहे हैं कि जो परंपरा रूप से चलता आ रहा है ना, ये मिथ्यात्व अगले समय उत्पन्न ना होवे, इसका नाम है मिथ्यात्व का अभाव या नाश, और कुछ नहीं है मिथ्यात्व का नाश। अगले समय सम्यक दर्शन को मिथ्यात्व का नाश थोड़ी ना करता है, मिथ्यात्व की उत्पत्ति नहीं होने को ही उसका नाश कहते हैं। नाश तो प्रति समय हो रहा है, जो श्रद्धा गुण की पर्याय उत्पन्न हुई और वो विपरीत मान्यता सहित उत्पन्न हो रही है तो उसे मिथ्या दर्शन कह रहे हैं। अगले समय उत्पन्न होने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय वापस विपरीत मान्यता सहित उत्पन्न हुई तो उसको भी मिथ्या दर्शन कहते हैं। अगले समय फिर श्रद्धा गुण की पर्याय उल्टी मान्यता सहित उत्पन्न हुई मिथ्या दर्शन कहेंगे, और अगले समय बाद में फिर श्रद्धा गुण की पर्याय अच्छी मान्यता सहित उत्पन्न हुई तो कहते हैं अब मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। हम ये कहते हैं कि प्रकाश ने अंधकार को नष्ट किया। बोलो प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है कि नहीं? तदर चाहिए अपने को, प्रकाश हुआ अंधकार नष्ट हो गया। लेकिन दोनों अलग अलग पर्याय हैं। प्रकाश से पूछो आप कि क्यों भाई तुमने अंधकार को क्यों मार दिया, वो कहते हैं मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं। प्रकाश तो अंधकार को देखता ही नहीं है, प्रकाश का तो अंधकार से सामना ही नहीं होता है। प्रकाश हुआ उस समय अंधकार है कहाँ? पिछले समय की पर्याय अंधकार रूप थी, आगामी समय की पर्याय प्रकाश रूप थी। उपचार से ऐसा कह दिया जाता है कि प्रकाश ने अंधकार का नाश किया। वस्तु स्थिति यह है कि अंधकार और प्रकाश का आमना सामना नहीं होता। वस्तु स्थिति यह है कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का आमना सामना नहीं होता। जिस पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उस पर्याय में मिथ्यात्व नहीं है, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव है, प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव और प्रध्वंसा भाव, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, प्रादुर्भाव प्रध्वंसा भाव है। एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव है, माने मिथ्यात्व की पर्याय का सम्यक दर्शन की पर्याय में अभाव है और सम्यक दर्शन की पर्याय का मिथ्यात्व की पर्याय में अभाव है। फिर हम कैसे कहते हैं, कैसे आक्षेप लगाए हम कि इसने उसकी हत्या कर दी? वो तो उसके आने के समय था ही नहीं, पहले ही मर चुका था। पिछली पर्याय में उत्पन्न हुआ था, पिछली पर्याय में मर गया था, नई पर्याय में जब सम्यक दर्शन वहां जाकर के खड़ा हुआ, मिथ्या दर्शन तो उसके पहले मर चुका था, तो कैसे उसे हत्यारा घोषित किया जाए? हम किसी जगह पर पहुंचे और किसी व्यक्ति को मरा हुआ पाया और कही गए तुमने इसको मार दिया, अरे मैं पहुंचा उसके पहले वो मर चुका था। तो हमें क्या करना है? मिथ्यात्व तो प्रति समय मर रहा है, उसे मारने का प्रयास नहीं करना, मिथ्यात्व को नाश करने का प्रयास नहीं करना। भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव को जाना और बस अगले समय में मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं हुआ, इतना सरल काम है। इसके लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं, इससे ज्यादा और कोई सरल काम नहीं हो सकता है। अब आपके दिमाग में जो मिथ्यात्व का जो एक खौफ बना हुआ था, भय था, डर था, उस डर को भी यहाँ हमने निकाल दिया। मिथ्यात्व से किसी भी प्रकार का कोई डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रति समय मरने वालों से डर के क्या करोगे आप? जो खुद ही मरने वाले हैं, उसके मारने के विकल्पों में हम अपना काल क्यों बर्बाद करें? मिथ्यात्व का नाश करें, मिथ्यात्व का नाश करना है, मिथ्यात्व नहीं बचना चाहिए, देख लेंगे इस मिथ्यात्व को भी। फिर तुम अपने वर्तमान पर्याय को क्यों बिगाड़ रहे हो, वर्तमान काल को क्यों बिगाड़ रहे हो आप? ये टिकता ही नहीं, अपने आप ही नहीं टिके। जो अपने आप ही मरने वाले हो उस व्यक्ति को मार करके आप अपने हाथ खराब क्यों करते हो? कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हो? कोई व्यक्ति अपने आप ही मरने वाला हो तो कोई समझदार व्यक्ति उसको मारने की कोशिश करता है? जो मिथ्या तो अपने आप ही मरने वाला है उसे मारने की कोशिश क्यों की जाए? ये कह रहे हैं जो मोह है ना, मोह की जो सेना है, ये पूरी की पूरी सेना इतनी कमजोर ही है, बहुत कमजोर है ये मोह की सेना। ये सारे जगत को अपने वश में तो किए हुए हैं, लेकिन ये अपने ही भ्रम से सारा जगत दुखी हो रहा है। खुद की मान्यता से ये नहीं कर रहा है, इसको ऐसा भ्रम हो गया है इसके करने से परेशान हुए। शुभम चक्रवर्ती का प्रसंग है ना, कितना खतरनाक है वो स्थिति। माने वो समझ लीजिए आप, उसको ले गया वो लवण समुद्र में। सुनिए कहानी आपने सबने सुनिए, पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ मैं, कहूँ तो सुना भी दो मिनट लगी। अरे वो शुभम जो था चक्रवर्ती, रसोईया उसके लिए भोजन बना करके लेकर के आए और भोजन बहुत गर्म होने से उसने वो जो थाली थी भोजन था तो उसके ऊपर फेंक दिया और वो मर गया, मर करके व्यंतर हो गया रसोईया जो था वो तुरंत मरा संक्लेश परिणामों से। एक प्रकार से ऐसी जो मौत हुई, मर करके देव हो गया व्यंतरवासी। क्रोध का परिणाम इसका, मंद कषाय रूप रहता तो कुछ भी बात हो सकती थी, लेकिन गरम गरम था और मार दिया उसको, मर गया वो। देव बनने के बाद में कुछ समय बाद उसके मन में बदला लेने का परिणाम आया। कैसे बदला लेने? ये तो चक्रवर्ती है और चक्रवर्तियों की ताकत तो बहुत अद्भुत होती है, चक्रवर्तियों की सामर्थ्य बहुत होती है। माने अपन सोच भी नहीं सकते इतनी सामर्थ्य है चक्रवर्तियों में। हजारों देव तो चक्रवर्ती की रक्षा करने वाले होते हैं, है मनुष्य रति का, लेकिन उसके रत्नों और निधियों की रक्षा करने वाले हजारों हजारों देव होते हैं। 14 रत्न और 9 निधियां हैं, एक रत्न की रक्षा करने वाले 1000 देव स्वर्ग के, दूसरे रत्न की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1000 देव, ऐसे हजारों देव होते हैं। माने और कटरानी की रक्षा करने वाले 16000 देव, और चक्रवर्ती का खुद का बल इतना अपूर्व कि पूरी सेना एक तरफ और चक्रवर्ती का अकेले का बल एक तरफ, तो किसकी सामर्थ्य। यंत्र देव भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता कि मैं यदि यहाँ कुछ भी कोशिश करूंगा तो इसके जो रक्षक देव हैं मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगा, उनके आगे मेरी चलेगी नहीं, तो क्या करें। कोशिश कुछ ऐसी की जाए कि इसको इसकी सीमा के बाहर निकाल दिया जाए। जैसे रावण सीता का अपहरण करने के लिए आया तो जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी वो तो सीता को पहले बाहर बुला लिया, तो उसकी मर्यादा के भीतर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो तो कितना प्रमाण मिलते हैं अपने को, जिस व्यक्ति ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया वो संकट में पड़ गया। हम कहते हैं तुम अपने स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन करके बाहर आए तो संकट में कैसे नहीं पड़ोगे। स्वभाव से बाहर निकलते ही महा दुख संकट निकट है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष स्वभाव की सीमा का उल्लंघन करके बाहर आते ही नहीं है, स्वरूप में गुप्त होकर के रहते हैं। अब वो चक्रवर्ती सम्राट, अब क्या सोचा उसने कि क्या करें, तो एक कृषक का भेष बनाया और बहुत सुंदर मायामयी फल तैयार किए और फल लेकर के पहुंचा। अब मायामयी सुंदर रसीले फल कभी खाए नहीं उसने, महाराज आपके लिए भेंट लेकर के आया हूँ, और भेंट देने के लिए दरबार में चला गया और राजा के सामने जाकर के प्रस्तुत किया। राजा ने फल खाए, अपूर्व अद्भुत, क्योंकि उस माया वही थे, कैसा अद्भुत रस उसने उसने माया से भर दिया, तो वो तो ऐसा मंत्रमुग्ध हो गया, ऐसे फल तो मैंने कभी खाए नहीं। बुलाओ उसको किसान को वापस, कहाँ से लेकर के आया है, किसान है इसे दो चार फल क्या, ये तो पूरे खेत के खेत है इस तरह के, बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा कहाँ पर है, किसान वो आपके राज्य में नहीं है लेकिन आपके राज्य के बाहर है। कहाँ पर है, जाओ हम उसको अपने अधिकार में ले लेंगे और रोजाना ऐसे फल खाएंगे। महाराज ऐसे तो नहीं चलना पड़ेगा, तो चलो जहाज में बिठाकर उसकी सीमाओं के बाहर, भरत क्षेत्र की सीमाओं के बाहर लवण समुद्र की ओर ले गया। और जब लवण समुद्र की तरफ ले गया वहां भयानक रूप बना लिया, जंतर अपने रूप में आ गया, बहुत भयानक रूप बना करके उसको डराने लगा। तो वो हम चक्रवर्ती को बदला लेने के लिए ये नमोकार मंत्र का जाप करने लगा। सुबह नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है और उधर से उपसर्ग कर रहा है, बहुत डराने का प्रयास कर रहा है। ये घबरा तो रहा है लेकिन व्यंतर का कोई असर नहीं हो पा रहा है इसके नमोकार मंत्र के जाप की वजह से। अब देखो आप होता क्या है, कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है वो व्यंतर, इसके अंदर में नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है, वो व्यंतर कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, लेकिन ये मन ही मन डर रहा है, बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अब क्या हुआ, व्यंतर ने कह दिया उसको कि देख तू जिस मंत्र का जाप कर रहा है ना, इस मंत्र को पानी में लिख और पैर से मिटा दे, छोड़ दूंगा मैं तुझे। मूर्ख को इतना ही समझ में नहीं आया कि मैं किससे सुरक्षित था, पानी में नमोकार मंत्र लिखा और पैर से मिटाने का प्रयास किया और इस महापाप के फल में मरकर के साथ में नरक में चला गया। हमें सिर्फ इतनी सी बात यहाँ बतलानी है कि वो सुरक्षित था लेकिन डर रहा है बिना मतलब, समझ में आ रही है बात। वो व्यंतर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है, लेकिन ये डरता है तो दुख पाएगा, परेशान होगा, ये डरेगा तो पराधीन बना रहेगा। ऐसे हम कह रहे हैं जिस तरह से वो व्यंतर उसको रंच मात्र भी दुखी और परेशान नहीं कर सकता है, वो अपनी ही भूल से, अपने ही डर से खुद दुखी है कि किसी प्रकार ये कर्म का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये जीव कर्म के उदय का लक्ष्य करता है, कर्म कर्म की तरफ देखता है तो दुखी होता है। हम कहते हैं तो सुरक्षित है कि नहीं नहीं साहब, कर्म नरक में ले जाए तो क्या हो गया, नरक में ले गया तो किसान शरीर के टुकड़े, तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो तेरे आत्मा में से क्या टूटा ये बता। अनंत गुणों में से एक गुण भी कम हो गया हो तो बताओ, असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी यदि टूट करके अलग हो गया हो तो बताओ क्या फर्क पड़ गया। नरक में चला गया तो भी मैं भरा पूरा झोंका क्यों था, निबोध में चला गया स्वामी आचार विभाग जन्म मरण हुआ तो भी मेरे आत्मा के स्वभाव में से कुछ कम नहीं हुआ, कुछ कमी नहीं हुई। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मुझे पर की अपेक्षा ही नहीं है, मुझे पर की चर्चा ही नहीं है, मैं पर की तरफ देख करके खुद ही दुखी हो रहा हूँ। तो मेरे दुख का कारण पर पदार्थ भी नहीं है, ये मेरी विपरीत वृत्ति ही मेरे दुख का कारण है। ये कितनी गजब बात कह दी है कि तुम अपनी भूल से दुखी हो। कदाचित मेरे दुख का कारण पर पदार्थ हो जाए, मान लो ऐसा मान लिया जाए कि मेरे दुख का कारण ये पर पदार्थ है, ऐसा मान लिया जाए और ऐसा हो जाए तो फिर ये जीव कभी सुखी नहीं हो सकेगा अनंत काल में। पर पदार्थ मेरे दुख का कारण है, ऐसा यदि ये अपने दुख का अधिकारी, दुख का कर्ता धर्ता पर पदार्थ को और कर्मों को मान लेगा तो ये जीव कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं दुखी कर्म के कारण नहीं हूँ, मैं दुखी अपनी भूल के कारण हूँ। अपनी भूल से दुखी हूँ तो अपनी भूल सुधार करके सुखी हो सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे को कोई परेशानी हुई और हमने हम डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा तुमने ये चीज खाई थी क्या, ऐसा किया था क्या तुमने, तुम्हारे लक्षण ऐसे दिख रहे हैं जिससे ऐसा पता लग रहा है कि शायद तुमने ये गुड़ खाया था, शायद तुमने ये दही इस तरह से इतनी बार ले लिया, इस वजह से ये परेशानी हुई है, सच सच बताओ। अब यदि वो ये कहता है कि नहीं साहब मैंने तो नहीं खाया, तो डॉक्टर कहते हैं यदि तुमने ये नहीं लिया तो फिर ये परेशानी किस वजह से हुई, अब तो पकड़ में नहीं आ रही ये बात। यदि इसके सेवन की वजह से हुआ हो तुम्हारे को परेशानी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चीज को बंद कर देंगे और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, पकड़ में आ गई हमारे को बात। लेकिन यदि तुम ये कहते हो कि इसकी वजह से नहीं है तो फिर तो समझ अभी पकड़ना पड़ेगा तुम्हारी किस वजह से। अभी आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि तू जो दुखी हो रहा है ये यदि दुखी दूसरे आदमी की वजह से हो रहा है तो बहुत मुश्किल है, उसको समझाना पड़ेगा। और यदि तू दुखी अपने आप की वजह से है तो सारा कंट्रोल तेरे पास में है, जिस वजह से दुखी था उसको बदल ले और दुखी हो जाए। कर्मों को दुख का कारण कहना, परद्रव्यों को दुख का कारण कहना, अपना कंट्रोल सिस्टम कर्म और परद्रव्यों के हाथ में दे देने जैसा है। अब हमारा पूरा का पूरा कंट्रोलिंग यदि परद्रव्य और कर्मों के पास में चले गई तो हम तो बेवस हो गए, लाचार हो गए। लेकिन इतनी स्वाधीनता यहाँ जैन दर्शन में है कि कर्म के उदय से प्रतिकूलताएं मिलते हुए भी कंट्रोल पावर तो तेरे हाथ में है, तू कंट्रोल कर सकता है। अरे कर्मों का भी रिमोट कंट्रोल हमारे पास में है, आप क्या समझ रहे हैं, कर्म को भी आप बांधना चाहें तो बांधे, जितना बांधना चाहें, कम करना के ज्यादा करना के बदल देना, ये सब आपके हाथ में। कर्म बेचारे कौन, हम परिणाम करें और कर्मों को बदलना पड़े, संक्रमण होना पड़े, हमारे परिणाम हुए और कर्मों का उत्कर्षण हुए, हमारे परिणामों से कर्मों में आकर्षण हुए, उन कर्मों को बदलना पड़ेगा। तो कर्म कहते हैं मैं क्या करूं, इसने पुण्य भाव किया तो मेरे को पाप कर्मों का आकर्षण करना पड़ा, उसके हाथ में नहीं है कुछ भी। मैंने कर्मों की सारी जो भी गणित है वो सब तो हमारे ही परिणामों के हिसाब से चलती है ना, तो हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हमारे परिणामों के हिसाब से चल रहा है। इतनी सी बात यदि हम समझ लें कि हमारे परिणामों के हिसाब से कर्म चलते हैं, तो फिर कर्म से दृष्टि नहीं देवे और अपने परिणामों को संभाले। परिणामों को संभालने के भी दो अर्थ है, जनवाणी और पंच परमेश्वरियों के अवलंबन से जब परिणामों को संभालता है तो कर्मों के समय में आने लगती है, ढीले पड़ने लगते हैं, और जब उनको भी छोड़कर अपने आत्मा की शरण लेता है तो काम हो जाता है। घर गृहस्थी और परिवार जन मोह बढ़ावन हार, उनके अवलंबन से मोह बढ़ता है, और पंच परमेश्वरी नवदेवता आदि ये सब मोह घटावन हार, वो मोह बढ़ावन हार से ये पंच परमेश्वरी जनवाणी आदि ये मोह घटावन हार है, और अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय आत्मा ये मोह नशावन हार है। आपको क्या चाहिए, मोह बढ़ाना है, मोह घटाना है, कि मोह नशाना है? सब रास्ते बता दिए। मोह बढ़ाना है तो इनका अवलंबन लो, मोह घटाना है तो जनवाणी का अवलंबन लो, तत्व ज्ञान का अवलंबन लो, और मोह नशाना है तो अपने ज्ञाय का अवलंबन लो। ज्ञाय के अवलंबन के बिना मोह का नाश नहीं होता, लेकिन इतना पुरुषार्थ अपने अंदर में स्वयं ही करना पड़ेगा। ये इन्होंने कहा है कि आत्मा ने किन पावे, कौन व्यक्ति किस तरह से पाएगा आत्मा को, क्यों नहीं प्राप्त करता है, कि मोह की सेना के वश में होता हुआ जो उसके अधीन हो गया अब वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, और जिसने कर्म के उदय की अधीनता छोड़ दी, कर्म का उदय आ रहा है आने दो, देखना ही नहीं उसकी तरफ, जो जीव कर्म के उदय के काल में कर्म के उदय की तरफ नहीं देखते हैं, कर्म का उदय थोड़े समय में उसे छोड़कर चला जाता है, यार ये सुनता ही नहीं। जो दुखी होता है उसको दुखी करते हैं, ऐसा है नियम जगत में भी, जो जिससे डरता है उससे उसको डराया जाता है, जो डरता नहीं है उसको उससे डराते भी नहीं। जंतर कर्म भूत प्रेत ये सब किसको दुखी करते हुए दिखते हैं, जो डरता है उसको डराते, जो कर्म से दुखी होता है उसको कर्म दुखी करते हुए दिखते हैं, और जो कर्म से दृष्टि हटा लेता है तो कर्म भी सोचता है कि यार मैं कितना भी कर लूं ये तो अपने स्वभाव से विचलित नहीं होता है, क्या करूं इसको। घर से बाहर निकला और दुनिया भर के खतरे हैं, और घर में रहे तो कोई खतरा नहीं, अपने घर में रहने वालों को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि संकल्प लेकर के बैठे हैं कि मैं तो अनुभव करके उठूंगा, फिर क्या मजा जो अनुभव नहीं हुए, कितनी देर लगती है आत्मा का अनुभव करने में, एक ही समय, एक समय नहीं हो जाता है आत्मा का अनुभव। अब बोलो आप कितना सरल काम है, कितना कम समय चाहिए उसके लिए, एक समय नहीं है हमारे पास में, हम बातें तो करते हैं अपनी रुचि की, लेकिन अपने आप के लिए 24 घंटे में से एक समय नहीं है। और कितने 24 घंटे निकल गए, कितने दिन निकल गए, कितने महीनों और कितने वर्ष निकल गए, कितने सागर निकल गए, कितने कल्प काल व्यतीत हो गए, अनंत अनंत काल व्यतीत कर दिया अपने आप के स्वरूप को समझा नहीं, अपने आप को जाना नहीं। कैसा आश्चर्य नहीं लगता कभी कभी, सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता है, सबकी खबर है लेकिन अपने आप की खबर नहीं है। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि अपनी खबर नहीं है, आश्चर्य इस बात का है कि अपने को जानने की तरफ भी नहीं है, अपने को जानने की रुचि भी नहीं है। किसी व्यक्ति की याददाश्त चले जावे तो उसको कितनी तड़प दिखाई देती है, एक बार देखो उसको, आप उस चित्र को उस परिस्थिति को अपने निगाह के सामने ला करके देखो, जिस व्यक्ति की याददाश्त चली गई है सर पे चोट लगने से, वो व्यक्ति किस तरह पागलों की भांति भटकता है, बताओ मैं हूँ कौन, भाई साहब आप जानते हो क्या मेरे को, सड़क पे पूछता है, लोगों से पूछता है, आप जानते हो मेरे को मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ रहता हूँ, कौन हूँ मैं, अपने आप के बारे में जानने की कितनी तड़प होती है, क्या स्थिति होती है उसकी, हमारे को इच्छा होती है कैसे कि हम है कौन, अपने आप को जाने तो सही, हम धोखे से किसी पड़ोसी को अपना स्वरूप समझ लिया कि शरीर पड़ोसी है, इसे अपना स्वरूप समझ लिया, ये भ्रम हो गया इसको। हम कहते हैं कि भैया ये तो तीव्र पुरुषार्थ कर, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ये तो तू नहीं है, शरीर तो तू नहीं है, ये तो मान ले, शरीर तेरे हिसाब से चलता नहीं है, तो फिर मैं हूँ कौन? कितना लगता है दिन भर में, सुबह से शाम तक कितनी बार ऐसे विचार आते हैं हमारे मन में कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या स्वरूप है? ये मोह की सेना को जीतने की विधि है। जो कल हम विकल्पों की बात कर रहे थे, विकल्प भी निश्चित होते हैं, उत्कृष्ट जाति के विकल्प, ये कैसे विकल्प होंगे? आप आंख बंद करके हाथ पे हाथ धर के शांति से बैठे, वस्तु स्वरूप का विचार करें, जो पढ़ा सुना है उसके बारे में विचार करें, आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है, और ऐसा अंदर से पुरुषार्थ हुए कि ये काम करना ही है मेरे को। कैसे नहीं होगा? आत्मा का अनुभव, सैनी पंचेंद्रिय हूँ, बुद्धिमान हूँ, तत्व ज्ञान मुझे मिल गया है, ये जनवाणी मुझे मिल गई है, ये आत्मा का अनुभव कैसे नहीं होगा? अवश्य होगा आत्मा का अनुभव। इंद्रभूति देखो आप, 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी के समूह चरण में सुनते रहे, प्रथम श्रोता थे, मतलब जब दिव्य ध्वनि चालू हुई तो उनकी मौजूदगी में चालू हुई, और अंतिम दिन तक दिव्य ध्वनि सुनते रहे, 30 साल तक सुनते रहे, लेकिन अपने स्वभाव में जमने का विकल्प नहीं आया। और जिस दिन महावीर स्वामी को निर्वाण हो गया सुबह, इस पुरुषार्थ से लगे कि शाम तक केवल ज्ञान लेके उठे, सुबह से शाम तक, कैसा पुरुषार्थ होता है। ज्यादा लंबा समय नहीं चाहिए इस मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए, किन्हीं साल लंबे समय का मिथ्यात्व चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, थोड़ा टाइम पुरुषार्थहीनता की बातें क्यों करता है? पुरुषार्थियों के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, धीरे धीरे नहीं होता है, धीरे धीरे त्याग नहीं करते हैं, धीरे धीरे नहीं छोड़ते हैं, ये श्रद्धा धीरे धीरे नहीं बदलती है, एक बार बदलती है, एक झटके से मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। इंद्रभूति का तो वो प्रसंग भी बहुत जबरदस्त है, जब वो कन्वर्ट हुआ था, तो जब कमाल हो गया उसमें, कुछ नहीं आता था उसको, कितना पढ़ा था उसने, कितना स्वाध्याय किया था पहले से बताओ। सम्यक दर्शन के पहले की बात कर रहा हूँ, सम्यक दर्शन प्राप्ति के पहले इंद्रभूति ने कितना स्वाध्याय किया था। लोग कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का शिष्य था, महावीर स्वामी का शिष्य था ना, मैं आपसे पूछता हूँ महावीर स्वामी से क्या सीखा था उसने, वो कब सीखा था? महावीर स्वामी ने बोलना शुरू किया उससे पहले तो छठवे सातवे गुण स्थानवर्ती मुनि हो गया था, क्या सिखाया महावीर ने? उससे पहले तो बोले ही नहीं ना महावीर स्वामी, उपदेश ही नहीं हुआ, दिव्य ध्वनि चालू ही नहीं हुई, तो वो चार ज्ञान का धारी हो गया, मति श्रोतावरी मने पर ज्ञान का धारी हो गया, उसके बाद तो दिव्य ध्वनि गिरी, ये छठवे सातवे गुण स्थानवर्ती मुनि ना आज। फिर भी हम कहते महावीर स्वामी का शिष्य था, कोई बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि उसने जो आत्म कल्याण किया, उस आत्म कल्याण करने में कितना टाइम लगा, कितना अभ्यास किया, कितना स्वाध्याय किया, ये बताओ हमारे को। कौन कौन से ग्रंथ समयसार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सत्वार सुत्त तो पढ़ा ही होगा, रामोकार मंत्र तो आता होगा, वो भी नहीं आता था, छह द्रव्य सात तत्व वो भी नहीं जानता था, पंच अस्थि काय वो भी नहीं जानता था, बोलो कैसा कैसी स्थिति है उसके पास, कुछ भी नहीं आता था उसको। 24 तीर्थंकरों के नाम भी नहीं आते थे, परमात्मा का स्वरूप भी नहीं समझता था, ऐसा ग्रहित मिथ्यात्वी, परमात्मा का स्वरूप भी नहीं जानता, अरियंतों का स्वरूप भी नहीं जानता, तो ऋषभ देव से लेकर के पार्श्वनाथ स्वामी तक 23 तीर्थंकरों के तो उसने नाम भी नहीं सुने थे क्या? महावीर स्वामी का कदाचित सुना हो, किताब आप कैसे कह सकते हो कि इन सब बातों को वो नहीं जानता था, ताकि बहुत बड़ा विद्वान था, जानता होगा कि नहीं जानता था, ये कैसे पता? हमारे को पता है, घटनापुरी 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं की, सबको पता है। देखो आप कैसी व्यवस्था, इंद्र की व्यवस्था, चक्रवर्तियों की व्यवस्था, ऐसी सभा, ऐसी प्रवचन का आयोजन, जो आयोजन करने वाला सौधर्म इंद्र है, वो व्यवस्था सौदर्भ इंद्र के पास में है और फिर उसके बावजूद इतनी अव्यवस्था कि रोजाना पब्लिक आ रही है, भगवान चुपचाप बैठे, विकल्प नहीं आ रहा है उसको कुछ भी। रोजाना इतने लोग आ रहे हैं और बोल ही नहीं रहे भगवान, लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा, उल्टा सीधा नहीं बोले होंगे सौदर्विंद्र को, सौदर्विंद्र को विकल्प नहीं आया, फिर वो शर्म नहीं आती, घोषणा क्यों की थी यदि प्रवचन नहीं कराना था तो, सब लोगों का इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, और रोजाना दिन में तीन टाइम चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, होगा कि नहीं होगा कार्यक्रम, एक बार बता दे कब होगा तब आ जाएंगे हम लोग, रोज आ रहे हैं लोग रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, देखो तो सही क्या स्थिति बन रही है। और 64वें दिन बाद में इंद्रभूति इंद्र को विचार आया इस तरह का, अरे यार भगवान की वाणी क्यों नहीं निकल रही है, फिर अवधि ज्ञान लगाया और पता लगता है जो गणधरी नहीं है सभा में, सभा में गणधर नहीं है तो दिव्य ध्वनि कैसे गिरेगी, अरे गणधर कहाँ है, उसने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और अवधि ज्ञान का प्रयोग करके देखा तो पता लगा ओहो इंद्रभूति वो गणधर बनने का पात्र जीव है, ब्राह्मण है वो तो। अब बोलो आप एक ब्राह्मण व्यक्ति यहाँ जैनियों के यहाँ आकर के और प्रथम सीट पर आकर के बैठने वाला है, ब्राह्मण है इंद्रभूति गौतम, अपने शिष्यों के साथ में है, रहित विद्यार्थी है, कैसे बुलाया जाए उसको, योजना रखी उसने अपने मन में कैसे बुलाए उसको, एक ब्राह्मण का वेश बनाया, वृद्ध का एक वेश बनाया और एक बुजुर्ग वृद्ध का वेश बना करके और चला गया इंद्रभूति के पास में। सभा लगी हुई है, 500 शिष्य सामने बैठे हुए हैं, इंद्रभूति गद्दी पे बैठा हुआ है और वहाँ एक बूढ़े से ब्राह्मण का वेश बना करके पहुँच गए और वहाँ जाकर के पूछा इंद्रभूति से, तुम्हारा एक प्रश्न है, एक शंका है, एक श्लोक कहाँ से जानना है, मेरे गुरु तो मौन बैठे हुए हैं, वो कुछ बोलते नहीं है और आप संस्कृत के विद्वान हो, आप श्लोक का अर्थ बतलाते हो, बोल क्या शंका है तेरी। तो ऐसा सुना जाता है कि वो तत्वा सूत्र के मंगलाचरण के रूप में जो पंक्तियां बोली जाती है, ये पंक्तियां इंद्र ने उस ब्राह्मण ने इंद्रभूति गौतम के सामने रखती है। क्या पंक्तियां सी सुनी होगी आपने कदाचित, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपत्तम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन में, सुनी कभी आपने पंक्तियां, ये पंक्तियां आपके सामने इसका अर्थ जानना है मेरे को। अब देखो संस्कृत का प्रकांड विद्वान है, किसी संस्कृत की लाइन का अर्थ करना उसके लिए कठिन काम नहीं है, त्रैकाल्यम काल तीन होते हैं, द्रव्य षटकम छह द्रव्य है, पंच अन्य अस्तिकाया पांच अस्तिकाए है, नौ पद सहितम नौ पदार्थ है, और अर्थ कर सकता है, बताया नहीं, सोच में पड़ गया, माथे पे तीन साल पड़ गए, चिंता की रेखाएं घूमने लगी दिमाग पर, क्या हो गया, क्यों चिंतित हो गया, वो इतनी चिंता क्यों हो गई उसको, घबराहट होने लगी मन में, मन ही मन सोच रहा है बताऊं कि नहीं बताऊं, अर्थ करूं कि नहीं करूं, कि क्यों, कि अर्थ करना तो बहुत आसान है लेकिन यदि मैंने अर्थ कर दिया कि द्रव्य छह होते हैं, पदार्थ नौ होते हैं, पांच अस्तिकाए होते हैं, और इसने फिर पूछ लिया कि छह द्रव्य कौन से होते हैं, तो वो तो श्लोक में लिखा ही नहीं, तो कैसे बताऊंगा, अब दिमाग में टेंशन चल रही है श्लोक का अर्थ बताऊं कि नहीं बताऊं, इसमें लिखा है पांच अस्तिकाए होते हैं, अब पांच अस्तिकाए के नाम नहीं लिखे, ये पूछ लेगा कौन से होते हैं, घबराने लगा इंद्र ने उसके उस घबराहट को पकड़ लिया और कहा कि क्या बात है, संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान के पास से भी मेरे को निरुत्तर लौटना पड़ेगा क्या, कि क्या बकता है, कहां से लाया है ये श्लोक, किसका शिष्य है तू, क्योंकि सुनी नहीं थी कभी बात, बोले मैं तो महावीर का शिष्य हूँ, चल उन्हीं के पास में, उन्हीं के पास चल के बात करेंगे, ये और क्या चाहता था। बस फिर वो वृद्ध ब्राह्मण आगे आगे, इंद्रभूति पीछे चल रहा है और 500 शिष्य और पीछे चल रहे हैं और घमंड इतना है कि मेरे इन शिष्यों को देख करके वो महावीर को घुटने टेक देगा, कौन होगा महावीर, मैं तो इतने लोगों के मेरे जैसा विद्वान कोई दूसरा होगा, रजिस्टर्ड विद्वान है इतने 500 विद्वान मेरे साथ में, मेरे शिष्य जो मेरे पीछे चल रहे हैं, इतने लोगों को देख करके वो तो चौंक जाएगा, चकरा जाएगा महावीर, तो क्या होगा, लेकिन फिर घटना कैसी घटी देखो आप। दरवाजे पे पहुंचे, मानस स्तंभ को देखा और देखते ही देखता रह गया, ये क्या है झटका। समोह चरण में प्रवेश नहीं किया, मानस स्तंभ को देखते ही सारा का सारा अभिमान मान खंडित हो गया, मानो दर्शन मोह चला गया हो, मिथ्यात्व चला गया हो। अंदर जा रहा है और दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, मैं तो सोचता था मेरे इतने शिष्य हैं, यहाँ तो तिरंग गति के जीव भी बैठे हैं, यहाँ तो देव गति के जीव भी बैठे हैं, वैर विरोध को छोड़ करके बैठे हुए हैं, शत्रुता नहीं दिखाई दे रही है, जहाँ शेर चीते बैठे हुए हैं वहीं हिरण बैठे हुए हैं, जहाँ सर्प बैठा हुआ है वहीं नेवला बैठा हुआ है, जहाँ कुत्ता है वहीं बिल्ली बैठी हुई है, शेरों के साथ में गायें बैठी हुई है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, छहों ऋतुएं एक साथ फल रही फूल रही है, चारों तरफ भूमि निष्कंटक दिखाई दे रही है, दर्पण के समान निर्मल भूमि दिखाई दे रही है, मंद सुगंधित पवन चल रही है, देवगति के जीव जिस सभा के अंदर बैठे हुए हूँ और देखता है ऊपर भगवान की तरफ, छत्र चमर भामंडल प्रभु अधर बैठे हुए हैं, निराधार बैठे हुए हैं, भामंडल पीछे दिखाई दे रहा है, देवलोक चमर हो रहे हैं, क्या चमत्कार देखता रह गया। और भगवान की तरफ दृष्टि पड़ी तो मानो भगवान ने मौन उपदेश दे दिया हो। देखो मौन उपदेश भी गजब होते हैं, मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती, समझने वाले चाहिए, बिना कहे समझ ले, वे होता है ना ऐसा, इशारे में समझ लेते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, मौन की भाषा समझते हैं, 3-4 साल का बच्चा, चॉकलेट बहुत पसंद होती है ना छोटे छोटे से बच्चों को, हमारे घर में आए और हमने कहा बेटा चॉकलेट खाएगा, तो 2-4 सेकंड तो रुका, बोला नहीं, क्या हुआ पसंद नहीं है, पसंद है तो खाएगा चॉकलेट, चॉकलेट लाऊं तुम्हारे लिए, कि नहीं नहीं क्या बात है, बोल ना क्या बात है, चॉकलेट पसंद है चॉकलेट ले ले चॉकलेट, कि नहीं नहीं मम्मी मना कर रही है कि मम्मी मना कर रही है, मम्मी तो कुछ बोल नहीं रही है, कि नहीं नहीं वो समझ जाता है इशारे को, बिना कहे समझ जाता है, वो इंद्रभूति को वो सारी चीजें आकर्षित करने में समर्थ हो रही थी, और मौन उपदेश जैसे ही दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का भान हुआ, मानो भगवान महावीर स्वामी ने मौन उपदेश दे दिया हो कि मूर्ख क्या देखता है, देखने वाले को देख, अपने स्वभाव को देख, कहाँ देख रहा है सुनने के उदय को, क्या देख रहा है पर पदार्थों को, अपने स्वभाव को देख। और मानो इंद्रभूति ने अपने स्वभाव को देख लिया और मौन उपदेश को सुन लिया, और फिर क्या था, दृष्टि अपने अंदर में चले गई, बाहर से दृष्टि हट गई, फिर कपड़े उतरने लग गए और गुणस्थान चढ़ने लग गए, कर्म छूटने लग गए, अंदर में गुणस्थान पहले से चौथा तो हो ही गया था, गुणस्थान पांचवा हो गया, गुणस्थान छठा सातवा हो गया, अंदर में मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चला गया। देखो आप कैसा चमत्कार हो रहा है, कैसी घटना घट रही है, साधु हो गया, मुनिराज हो गया, 3 रचाएं चौपड़ी और 4 ज्ञान का धारी होकर के उस सीट पर जाकर के बैठ गया जहाँ सारे लोग संत बैठे हुए और सबसे प्रमुख सीट पर गणधर हो गया। सोचो तो सही क्या हो गया, कितना समय लगा उसके ग्रहित मिथ्यात्व को जाने में, कितना समय लगा मिथ्यात्वादी के छूटने में, भरत जी को तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। अरे तू कर्मों की बात कर रहा है तो कदम बढ़ाना, एक बार बढ़ तो सही, स्वभाव सम्मुख होने का प्रयास तो कर, कर्मों का बहाना मत बना, बहाने बनाने में हम बहुत चतुर हो गए हैं, छोटी छोटी सी चीज में बहाना बनाते रहते हैं हम, क्या करें साहब कर्म का उदय ऐसा है, क्या करें साहब आजकल पाप कर्म का उदय चल रहा है, आजकल सत्संग में नहीं आ पाते, वारे वाह पाप कर्म के उदय का बहाना बना रहा है, राग मोह आसक्ति तेरी खुद की नहीं छूटती है और दोष देता है कर्म के ऊपर, कर्म का उदय क्या करूं, मन तो बहुत रहता है लेकिन आजकल कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही क्या करें साहब हमारे कर्म का उदय ऐसा आ गया है, आजकल नहीं सुनने के लिए आ पाते, रुचि नहीं है, रुचि नहीं है इसलिए ऐसा होता है, अंदर की तीव्र रुचि हो गए पर्वत भी रास्ता दे देते हैं तीव्र पुरुषार्थियों के लिए, तो कर्म तो कौन है, कर्मों की क्या सामर्थ्य है, आज तक अनादि काल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसने स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ किया हो और कर्मों ने उसे रोका हो, अनादि काल से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمر کستے ہیں. امرت چندر کہہ رہے ہیں اس سینا کو جیت لینے کے لیے, اور جیت جاتے ہیں سچ میں, اندر میں جاتے ہیں اور کرم بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں وہ کرم. تو صاحب کیا کریں, ہم کیا کریں, چاہتے تو ہم بھی ایسا ہیں, پرشاد تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہے کوئی ایسی اسپشٹ ودھی؟ اس سے زیادہ اور کوئی ودھی نہیں ہے. ابھی ورتمان میں وکلپاتمک بھومکا میں تتو نرنے کے اترکت دوسرا کوئی اپائے دکھتا نہیں ہے. بدھی پوروک کرنے یوگی جو کام دکھتا ہے وہ کام یہی ہے, ستسنگ پرتم بھومکا میں, اور ستسنگ کے بعد میں جو باتیں اس ستسنگ میں سنی ہو, جو باتیں جنوانی کے سانیدھی میں گرو کے نردیشن میں جانی ہو, شانت چت سے اس کے بارے میں وچار چنتن بدھی پوروک کرنے یوگی کام بتلا رہا ہوں میں. بدھی پوروک کیا کریں, یہاں سے اٹھنے کے بعد میں گاڑی لے کر کے یدی جائیں ہم تو گاڑی چلاتے سمے, گھر میں بیٹھے ہوں تو بیٹھے رہتے سمے, ہم نے کیا سنا, آچاریہ کند کند سوامی نے کیا کہا, گاتا کا کیا ارتھ ہے, کیا بھاو ہے, اس سے میرا پریوجن کیسے سدھ ہو سکتا ہے, یہ آتما کون ہے, یہ آتما پرماتما کیسے بن سکتا ہے, اس آتما کا کیا سوروپ ہے, ایسا چتر کھینچے. جب تک پروکش انوبھوتی نہیں ہوگی نا, تب تک پرتیکش انوبھوتی نہیں ہوگی. کیا کہہ دیا میں نے, پروکش انوبھوتی بھی ضروری ہے. سب انوبھوتی تو پرتیکش ہی ہوتی ہے, ہم نے تو ایسا سنا ہے. آپ کہہ رہے ہو پروکش انوبھوتی, انوبھوتی بھی پروکش ہوتی ہے کیا؟ انوبھو تو پرتیکش ہی ہوتا ہے نا, کیا انوبھو میں بھی پروکش بنا ہے؟ مانتے ہیں ہم کہ انوبھو پرتیکش ہی ہوتا ہے, لیکن پروکش انوبھو کے پہلے پرتیکش انوبھو نہیں ہوتا. یہ کیا کہہ رہے ہو, وستو استھتی ہے. جب کبھی کسی جیو کو آتما کا انوبھو ہوتا ہے تو آتما کا انوبھو ہونے کے پہلے آتما کے سمبندھ میں جو ایک چتر کھچ گیا ہے اسے پروکش انوبھوتی کہتے ہیں. آگم کے آدھار سے, شاستر کے آدھار سے, گرو اپدیش سے آتما کے سوروپ کو اسپشٹ جان لینا وہ پروکش انوبھوتی ہے. جیسے سمجھیے ہم نے کسی ویکتی کے بارے میں سنا, اور کسی ویکتی کے بارے میں سن کر کے ہمارے دماغ میں جو چتر بن گیا ہو وہ ہے چتر پروکش, اور جب اس ویکتی سے ملے تو اس کا جو چتر دماغ میں آیا وہ ہے پرتیکش. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں پڑھ پڑھ کر کے, سن سن کر کے اس کا جیسا چتر بن رہا ہے ہمارے دماغ میں, وہ اتنا سنے, اتنا پڑھے اور اتنا کلیئر ہو جاوے کہ پرتیکش ملے تو معلوم چلے کہ ارے ایسا ہی تو میں نے سوچا تھا ان کے بارے میں, اور ایسا ہی ان کو پایا. ہو جاتا ہے ہمیں سمے شکر جی جانا ہے. اب جب تک سمے شکر جی نہیں بنے تو ہمارے دماغ میں سمے شکر جی کا ایک چتر بنتا ہے کہ نہیں, کیسا ہوگا سمے شکر جی؟ کسی ویکتی سے سنا, ارے واہ سمے شکر جی کی بہت چڑھائی ہے, پہاڑی ہے, تو ہمارے دماغ میں پہاڑ کی آکرتی بننے لگتی ہے. اچھا پہاڑ ہے, بہت ہائٹ ہے, اچھا بہت اونچا پہاڑ ہوگا, تو اس کے اوپر الگ الگ ایسے چونک بنے ہوئے ہیں, مندر بنے ہوئے ہیں, تو ہم ہمارے چتر کے اندر سمے شکر جی کے چتر میں مندر وراجمان کر لیتے ہیں نا. ایسے کوٹ بنے ہوئے ہیں, چرن استھاپت ہیں وہاں, وہ سب دکھنے لگتے ہیں ہمارے کو. کیسے دکھ رہے ہیں, گئے نہیں ہیں ابھی. کسی بھی ویکتی کے بارے میں ہم نے کہا صاحب ایک پنڈت جی ہیں پروچن سننے کے لیے چلو, تو پنڈت جی کہتے ہیں آپ کے دماغ میں کیا لگتا ہے, روتی کرتا پہنتے ہوں گے, ٹوپی لگاتے ہوں گے, کوئی بزرگ سے ہوں گے, 60 سال کے ہوں گے, کوئی نہ کوئی چتر. پھر ہم نے ان کے بارے میں سنا کہ نہیں نہیں وہ تو جوان ہے, تو پھر ہمارے کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں نہیں وہ پینٹ شرٹ پہنتے. تو جو بھی چتر ہمارے دماغ میں بنتا ہے سن کر کے, تو جو سن کر کے پڑھ کر کے چتر بنا ہے تو پروکش ہے, اور جو مل کر کے ہوا ہے وہ پرتیکش ہے. تو پرتیکش ہونے کے پہلے جب تک سنا ہے تب تک جو پروکش بنا ہے وہ ضروری ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کے دماغ میں پہلے آتما کے سندربھ میں پروکش انوبھوتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیسی پروکش انوبھوتی؟ کہ آتما انت گن والا ہے, اسنکھیات پردیشی ہے, امورتک ہے, جانادی گن والا ہے, اپیوگ لکشن والا ہے, یہ ساری چرچائیں پروکش انوبھوتی ہے. یہ تو ہوئی کہ نہیں ہوئی پہلے یہ بتاؤ. جن جیووں کو ایسی پروکش انوبھوتی نہیں ہوتی ان کو پرتیکش انوبھوتی کا کوئی چانس نہیں ہے. جس کے وکلپ میں بھی آتمانوبھوتی کی بات نہیں ہے اس کو نرکلپ آتمانوبھوتی ہوتی ہی نہیں ہے. निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के पहले विकल्प भी आत्मा के संदर्भ में ही चलते हैं। कैसे विकल्प चलेंगे? भोजन के विकल्प चल रहे हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी? नहीं होगी। क्या होगी? आत्मा के विकल्प चले और फिर विकल्प टूटे तो फिर अनुभूति होती है। कोई कहेगी साहब हमें तो आत्मा का अनुभव करना है, पर अनुभव निर्विकल्प होता है तो विकल्पों में क्यों उलझाते हो? लोग कह सकते हैं ना हमें तो अनुभव करना है साहब, आप विकल्पों में क्यों उलझाते हो? हमारे को निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है। अरे भाई निर्विकल्प भी अर्थात विकल्पातीत होना भी विकल्प पूर्वक ही होता है। तो पहले विकल्प तो कर, कौन से आत्मा के बारे में? हमारे को भोजन का विकल्प नहीं आया और भोजन हो जावे, ऐसा होता है कि साहब ब्रेकफास्ट करने का विकल्प ही नहीं आया मेरे को तो, लेकिन ब्रेकफास्ट तो कर लिया मैंने, ऐसा कैसे होगा? किसी व्यक्ति को दुकान खोलने का विकल्प ही नहीं आया और जाकर के दुकान खुल जाए, ऐसा होता है? बिजनेस करने का विकल्प नहीं आया और बिजनेस हो जाए, जॉब छोड़ने का विकल्प नहीं आया और जॉब छोड़ देवे, कपड़े पहनने का विकल्प नहीं आया और पहन लेवे, नहाने का विकल्प नहीं आया और नहाए, स्वाध्याय का विकल्प नहीं आया और स्वाध्याय कर लेवे। दुनिया में कोई भी काम जब विकल्प के बिना नहीं होता या काम होने के पहले उस संबंधी विकल्प अवश्य आते ही आते हैं, तो फिर आत्मा के अनुभव के पहले आत्मा संबंधी विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूरी है। तो समझ लीजिए अभी यदि हमारे विकल्पों में भी आत्मा नहीं आता है तो आत्मा का अनुभव होगा कैसे? तो आत्मा का अनुभव करने के लिए पहले आत्मा के संबंध में विकल्प तो आए। जिसके हृदय में अभी आत्मा के अनुभव संबंधी विकल्प भी नहीं आते हैं उसे आत्मा का अनुभव कैसे होगा? शादी होने के पहले शादी संबंधी विकल्प आते हैं कि नहीं? बातें भी होती है, विकल्प भी चलते हैं, और विकल्प ही नहीं होवे और बात ही नहीं होवे और सीधा हो जाए, ऐसा नहीं होता है दुनिया में कहीं भी। तो जैसे आत्मा के अनुभव के बारे में विकल्प भी नहीं आए और सीधा आत्मा का अनुभव हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्या करें वर्तमान भूमिका में? आत्मा के अनुभव के संदर्भ में विकल्प, आत्मा के बारे में विकल्प, वस्तु स्वरूप के बारे में विकल्प, जिनवाणी के बारे में नहीं, देव शास्त्र गुरु के बारे में नहीं, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा के बारे में वो विकल्प चले। और अंदर में जब वो विकल्प चलते हैं तो फिर वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करते करते वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, मन जब विश्राम को प्राप्त कर लेता है, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते, विचार करते करते, विकल्प चलते चलते, जब विकल्प इतने तीव्र हो जाते हैं कि वे विकल्प एक समय ऐसा आता है कि वे विकल्प टूट जाते हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। देखो क्या कहा है, मन पावे विश्राम। किससे विश्राम? वस्तु विचारत ध्यावते। आप वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, शांत चित्त होकर के बैठे हैं, दुनियादारी के सारे विकल्पों को तोड़ दिया है, घर गृहस्थी के परिवार के शरीर संबंधी विकल्पों को तोड़कर आत्मा के विकल्पों में लगे हुए हैं। ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार चलते चलते विश्राम मन का, हम विश्राम कब करते हैं? जब थक जाते हैं। जब हम थके होते हैं तो फिर विश्राम करना नहीं, हो जाता है, अपने आप ही विश्राम मांगता है शरीर। और फिर जब ज्यादा थके होते हैं तो ऐसी नींद आने लगती है कि बैठा होता है तो बैठे बैठे नींद आने लग जाती है, थके तब। तो कह रहे मन को विश्राम चाहिए, मन जब विश्राम प्राप्त करेगा तब अनुभव होगा। तो मन को विश्राम के लिए पहले मन को थकाओ तो सही। वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए आत्मा का चिंतन करते करते मन इतना थक जाए कि विचार करते करते विश्राम को प्राप्त हो और आत्मा का अनुभव हो जाए, तो ये आत्मा के अनुभव की विधि है। वस्तु स्वरूप का विचार करते करते ऐसा होगा तो बुद्धि पूर्वक क्या काम है हमारे हाथ में? वस्तु स्वरूप का विचार, आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन, हूँ कौन छू? जो आगम में कहते हैं कि तू परमात्मा है, तो कहते हैं हूँ परमात्मा क्यों? तो निर्णय करने का प्रयास कर उसका। गुरुदेव बार बार में कहते थे हूँ परमात्मा क्यों एम नक्की कर, हूँ परमात्मा क्यों एम नक्की कर, भूलेला भगवान छे, बदा भूलेला भगवान छे। हर जीव भूला हुआ भगवान है, स्वयं परमात्मा है, लेकिन अपने परमात्मा स्वरूप को भूल गया है। इस बात का निर्णय करे विकल्पात्मक भूमिका में, विकल्प टूट कर निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। तो यही एकमात्र विधि है, यही एकमात्र उपाय है। इस विधि से हम सब इन कर्मों को जीत ले रहे, कर्मों की सेना पर विजय प्राप्त कर ले रहे, और इस कार्य को करने के लिए कमर कसे तीव्र पुरुषार्थी हुए, आत्म कल्याण पूर्वक न केवल सम्यक दर्शन, न केवल सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और प्रसारांतर से अंत काल में मुक्ति की प्राप्ति करें, सादी अनंत काल के लिए अक्षय अनंत सुख का उपभोग करते रहे। इसी मंगल भावना से बात करें।
ये स्वरूप समझा।